ओम शांति। संगम युग पर मीठे बाबा ने हम सबको ज्ञान रत्नों से खेलने का सौभाग्य दिया है। सतयुग में तो स्थूल रत्नों से खेलेंगे, लेकिन संगम युग ही है जब अविनाशी ज्ञान रत्न जो स्वयं भगवान हम सबको दे रहे हैं, उन रत्नों से खेलने का हमें सौभाग्य मिलता है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे, रूह रिहान करेंगे, जो हर ब्राह्मण आत्मा के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जिस दिन से हम बाबा के बनते हैं तो बाबा कहते हैं कि जो बाप को पहचान लेता है उसके साथ साथ माया भी उसका पीछा करती है, सामना करती है, और नए नए प्रकार से जिस प्रकार से हम बाबा को अथवा माया को पहचानते हैं, माया अपना और भी अंदर से रूप बदल करके नए नए रूप में आती है। उसके बहुत वैरायटी स्वरूप हैं, क्योंकि माया का साम्राज्य चल रहा है। तो माया के साम्राज्य में, अति के वातावरण में, जब पांचों विकारों का और प्रकृति के पांचों तत्वों का फुल फोर्स है, ऐसे समय में बाबा के बच्चे हर विघ्न का सामना भी कर सकें और विघ्न विनाशक की स्थिति में भी रह सकें, उसके लिए बाबा अपनी शक्तियां तो हम सबको देते ही हैं। आत्मा तो शक्तिहीन बन गई थी, और शक्तिहीन आत्माएं सर्वशक्तिवान की शक्ति से शक्तिशाली अवश्य बनती हैं। लेकिन बाबा कहता है तुम महारथी बनते हो तो माया भी ग्राह का, अजगर का रूप धारण करती है, और गायन भी है गज को ग्राह ने खाया, ग्राह अजगर को कहते हैं, मगरमच्छ को। अब वो मगरमच्छ कैसे हाथी को पकड़ेगा, वो तो एक कहानी बनाई है, लेकिन प्रैक्टिकल में इस संगम युग पर बहुत अच्छे ज्ञान और योग की देश करने वाले कई बार सेवाओं में अति व्यस्त होने के कारण अनेक विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं, और जब नए नए प्रकार के विघ्न आते हैं तो आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है, निराश हो जाती है, उसे मंजिल बहुत दूर लगती है, ऐसे अनुभव करता है कि बाबा तो कहता है कि बहुत सहज मार्ग है, लेकिन ये सहज मार्ग कई आत्माओं के लिए सहन करने वाला मार्ग बन जाता है। जैसे बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, बहुत सामना करना पड़ता है, बहुत युद्ध है, बहुत मेहनत है, और उस मेहनत के कारण जब बहुत कोई हार खाते हैं, बार बार चोट लगती है, बहुत संस्कार नए नए रूप में वार करते हैं, तो आत्मा दिल शिकस्त हो जाती है, निराश हो जाती है। बाबा तो उसे बहुत ऊंचे ऊंचे सम्मान से, बहुत ऊंची नजर से, त्रिकालदर्शी हमारा बाबा है, हमारे तीनों कालों को जानता है, और बाबा को निश्चय है, कौन सा, यही तो मेरे बच्चे कलप कलप के विजयी हैं, इनको ही तो मैंने ऐसा बनाया था, यही तो नई दुनिया के मालिक बने थे। तो बाबा को संपूर्ण निश्चय है, लेकिन बच्चे जब देखते हैं तमोगुणी वायुमंडल, बहुत विकारों का फुल फोर्स, और कईयों के सामने बहुत युद्ध माया की चलती है, तो उस युद्ध के कारण निराश हो जाते हैं, मंजिल स्पष्ट दिखाई नहीं देती। आज एक ओर हम आपको इस तरफ ध्यान खिंचवाएंगे, क्योंकि नए नए जब बाबा के बच्चे हम बनते हैं, बहुत सारा ग्रुप इस सभा में नया है, कल बाबा के सामने सभी खड़े हुए थे, तो नए बच्चों का जोश तो देखने जैसा होता है, उमंग उत्साह, ऐसे लगता है कि जैसे कोई पंख लग गए हैं, इतनी नशे से बोलते हैं कि अरे भगवान मिल गया, पाना था सो पा लिया, अब क्या रह गया काम बस। लेकिन जब आगे चलते हैं और भिन्न भिन्न छिपे हुए संस्कार जब सामने आते हैं, तो लगता है कि बहुत ऊंची मंजिल है। बाबा भी छोटे बच्चे को तो उंगली पकड़ करके साथ देता है, निभाता है, लेकिन थोड़ा सा कोई बच्चा बड़ा हो जाए फिर उंगली छोड़ देता है कि अभी तुम अपने पांव पर चल करके दिखाओ। तो उसको लगता है कि अभी तो मेरा कोई साथी नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं। और ये भी ऐसा होता है क्या, परिवार में भी उसे दिखाई देता है। कल भी बाबा कह रहे थे विश्व परिवर्तक बच्चे, टाइटल बहुत ऊंचा है, लेकिन स्वयं को और परिवार की छोटी मोटी बातों को परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, इसलिए एक दूसरे की पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में जाने से अनेक प्रकार के नए नए विकराल रूप माया के सामने दिखाई देते हैं। और आत्मा जब निराश होने लगती है, उदास होने लगती है, तो मैं समझता हूँ बाबा के हर बच्चे को ये अनुभव है कि बीच बीच में उदासी, निराशा, थकावट, ऐसी कुछ घड़ियां आती हैं, जो योग में भी बहुत ऐसे लगता है कि भारीपन है, मजा नहीं आता, रस नहीं आता। मुरली भी ऐसे लगती है कि बाबा की मुरली तो वही चलती है, कोई नवीनता तो है ही नहीं। आखिर भी बाबा तो यही कहता है ना, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करो, हम घर बैठे भी याद कर सकते हैं, इसमें भी हमारा समय क्यों जाए। ऐसे ऐसे कई नेगेटिव प्रश्न, जैसे जब दुश्मन कभी वार करने वाले होते हैं तो सबसे पहले वो सप्लाई लाइन काट देते हैं, टेलीफोन की, पानी की, बिजली की, जिससे सहज रीति से अटैक कर सके। तो ऐसे ही माया भी ऐसा अटैक करती है, ये जो सप्लाई लाइन है ब्राह्मण जीवन की उन्नति के जो साधन है, बाबा की मुरली है, अच्छे से अच्छा हमारे को ब्राह्मण परिवार का संग मिला है, यज्ञ का अच्छा ब्रह्मा भोजन मिल जाता है, भोग मिल जाता है, मधुबन है, बाबा की मुरली है, कहते बाबा से तो मिल के आए हैं, मधुबन तो हो के आए हैं, क्या हर साल जाएंगे, एक बार तो हो के आए, सब देख लिया। इस प्रकार के संकल्प, इस प्रकार से जब माया अंदर प्रवेश होती है सूक्ष्म में, तो ये सप्लाई लाइन जो है, जो हम सबको शक्तियां देती है, शक्तियां या तो बाबा से कनेक्शन जोड़ने से मिलती हैं, या बाबा की मुरली सुनने से मिलती हैं, अच्छे संग से मिलती हैं, अच्छा अच्छा योग युक्त ब्राह्मणों के हाथ का बनाया हुआ पवित्र भोजन, उससे शक्तियां मिलती हैं। लेकिन अगर संग में ही कोई ना आए, ब्रह्मा भोजन ही अच्छा न लगे, मुरली ही बोर कर दे, खुशी गायब करने वाली हो जाए और योग में बैठे तो सुस्ती आए, नींद आए, थकावट का अनुभव हो, योग का रस ही ना आए, तो ये सब क्या है? ये सब सप्लाई लाइन माया काट रही है, चेक करना। ये स्रोत अगर कट गए तो शक्तियां कहां से आएंगी? इसलिए विघ्नों के कारण आज सबसे पहले हम उस पर ध्यान दें। सबसे पहला कारण एक नजर आता है जिस पर बाबा हम सब का ध्यान खिंचवाते हैं, व्यक्त और व्यर्थ बातें या कोई भी छोटी मोटी बात, कोई भी संस्कार, उसका अधिक चिंतन और वर्णन। हम कई बार बहुत छोटी बात को इतना सोच लेते हैं, इतना अंदर अंदर चिंतन कर लेते हैं जो एक बोझ बन जाता है। बाबा तो कहता है उल्टी और सुलटी, व्यर्थ हो या समर्थ हो लेकिन किसी भी सोच का अधिक चिंतन नहीं चाहिए, अधिक विस्तार नहीं चाहिए। नहीं तो अगर कोई पॉजिटिव भी सोचने लगता है, बहुत अच्छे अच्छे चिंतन जब चलते हैं और अधिक विस्तार में चला जाता है तो भी उसकी नींद फिट जाती है, उसकी दिनचर्या अपसेट हो जाती है और व्यर्थ तो नुकसान करता ही है, वो तो हम सभी अनुभवी हैं। बाबा हम सबको व्यर्थ सोचने से ही कहता है, बच्चे पहले तो व्यर्थ सोच को बंद करो। और व्यर्थ कहाँ से आया, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका जन्म कहाँ से हुआ, उस पर हम सबका ध्यान जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम इन नेत्रों से, इस दृष्टि से, जैसे हम मुख से भोजन करते हैं, ऐसे दृष्टि भी जो कुछ देखती है वो उसके चिंतन में चला जाता है, उसके मन का भोजन बन जाता है। तो देखने का प्रभाव, सुनने का प्रभाव, हम जिस साथ में संग में उठते बैठते हैं उनकी बातों का प्रभाव कई बार आत्मा की आंतरिक स्थितियों को खराब कर देता है और व्यर्थ सोचने की आदत बन जाती है। और जहाँ व्यक्त और व्यर्थ भाव अंदर प्रवेश हो गए, इसको ही बाबा कहते हैं ये बाह्य मुक्ता है। एक है अंतर मुक्ता और एक है बाह्य मुक्ता। जो अंदर जाना जानते हैं, अंतर्मुखी हो जाते हैं, वो अंदर को देख सकते हैं। तो अभी 3 मिनट के लिए सभी अंतर जाकर के अंतर को देखो। तो सभी बाबा के बच्चे अंतर्मुखता के सुख को जानते हैं और जो अंतर्मुखी रहना जानते हैं वो विघ्नों को दूर से ही परख लेते हैं। कौन सा विघ्न किस रूप में आ सकता है, उन्हें स्पष्ट अनुभव होने लगता है। इसलिए विघ्नों को, विघ्न आ जाए फिर उसको हम भगाएं, उससे युद्ध करें। मन के अंदर हलचल आ जाए, स्थिति डगमग हो जाए, चेहरे पर क्रोध के चिन्ह आ जाएं, खुशी गायब हो जाए, उसके बाद दुश्मन वार कर ले और फिर शस्त्र याद आए, तो इसका मतलब है हम अंतर्मुखी नहीं रहते हैं। इसलिए हर एक ब्राह्मण को, हर बाबा के बच्चे को, जहां पर भी वो रहता है, जिस स्थान पर रहता है, बाबा ने पिछले साल एक होमवर्क सबको दिया था कि हर एक स्थान, हर एक जोन, सिर्फ सेंटर नहीं, सिर्फ एक व्यक्तिगत घर नहीं, लेकिन पूरे के पूरा जोन निर्विघ्न स्थिति का सर्टिफिकेट ले, कि पूरे ही जोन के जितने भी ब्राह्मण हैं सब कहते हैं मैं बिल्कुल निर्विघ्न हूँ, और कोई भी विघ्न आए तो मैं उसका सहज सामना करके पार हो सकता हूँ। क्योंकि विघ्नों की दुनिया में हम जी रहे हैं, ऐसा तो कोई कहेगा ही नहीं कि विघ्न आएंगे ही नहीं या आते ही नहीं है। विघ्नों का काम है आना और हमारा काम है विघ्नों को भगाना, विघ्न जीत बनना। तो विघ्न जीत बनने के लिए, विघ्नों के दुनिया में तो कारण आप सब जानते हैं, बाबा ने हम सबको उसकी जड़ बताई है। विघ्नों की जड़ जानते हैं क्या है? सभी समस्याओं की जड़ देह अभिमान है। आत्मा का ज्ञान गुम होने से कितनी प्रॉब्लम्स दुनिया के अंदर खड़ी हुई हैं, हम सभी प्रैक्टिकल देख रहे हैं। चाहे वो उग्रवाद है, आतंकवाद है, जाति भेद के कारण दंगे हैं, झगड़े हैं, कई प्रकार के अनेक हिंसाएं हैं, बलात्कार हैं, विरोध हैं, दुश्मनी है, उन सब की जड़ हर विकार की। कहता है बाप, बाबा कहता है कि पापों का बाप देह अभिमान है। और जब तक हमने देह अभिमान को अपना मित्र बनाया है, तब तक नए नए प्रकार के विघ्न आते ही रहेंगे, वो समाप्त हो सकते हैं। और विघ्नों को समाप्त करने के लिए बाबा ने हम सबको पहले पहले ही ये पाठ पढ़ाया कि तुम एक चैतन्य आत्मा हो। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में रहोगे, जितना अपने स्वस्वरूप में स्थित रहोगे, उतना विघ्नों पर अपने आप विजय हो जाएगी। अपने आप लगेगा कि ये आया, ये बात आ गई, इसने ये कह दिया, चलो ठीक है, मैं आत्मा तो अलग हूँ, मुझे इसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो जब सोल कॉन्शियस स्थिति में और आत्मा के जो सातों निजी गुण हैं, उन गुणों में आत्मा अपने को संपन्न बनाती जाती है, तो हर विपरीत परिस्थिति का वो सहज सामना कर सकती है। परिस्थितियां ना आए ऐसा नहीं है, लेकिन एक स्वस्थिति हर परिस्थिति पर विजयी बना देती है। अब स्वस्थिति किसने अपनी कितनी मजबूत की है, पहले तो उसका अपना मनन, उसका चिंतन, उसको बुद्धि को बिजी रखने का अभ्यास। मन और बुद्धि जिसकी फ्री है या जिसकी व्यर्थ की तरफ लगी हुई है, वहां ही विघ्नों का प्रवेश होता है, उसको प्रवेश मिल जाता है। तो इसलिए बाबा ने हम सबको ज्ञान और योग के अंदर व्यस्त रहना सिखाया है। खूब अच्छी तरह से व्यस्त रहो, बाबा की मुरलियों का अच्छी स्टडी करो, इधर उधर की पुस्तकें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाबा का इतना साहित्य है, मुझे तो पर्सनल लगता है शायद 36 साल में मैंने पढ़ने के सिवाय, लिखने के सिवाय सेवाएं भले वैरायटी मिली हैं, लेकिन ये इतनी सेवा बाबा ने मुझसे कराई है, जो दिन रात ऐसे लगता है कि अंदर चिंतन ही वो बन गया है, ज्ञान ही चिंतन में है, ज्ञान ही वर्णन में है, ज्ञान के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो ये एक हॉबी भी होती, आदत भी होती है, ड्यूटी तो मिली लेकिन एक आदत बन गई। इसलिए अभी भी जब समय मिलता है, अपने पास इतनी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, ज्ञानामृत में इतने अच्छे अच्छे लेख आते हैं, जगदीश भाई के लिखे हुए इतने अच्छे अच्छे ग्रंथ जैसी पुस्तकें हैं, पढ़ते जाओ, एक एक बात स्पष्ट होती जाती है, बुद्धि भरपूर हो जाती है। तो हम सबको इतना अच्छा खजाना दिया है, जो हम बुद्धि को श्रेष्ठ स्मृतियों से समर्थ रख सकते हैं। और समर्थ है आत्मा तो जैसे कोई शक्तिशाली शरीर से भी होता है, तो वायुमंडल में अगर ठंडी है, शीतलहर चल जाती है, तो मजबूत शरीर वाले को जल्दी सर्दी जुखाम नहीं होता है, छोटी मोटी बीमारियां उसको जल्दी अटैक नहीं करती हैं। लेकिन जो कमजोर होते हैं, तो थोड़ा भी हवा पानी चेंज हुआ, क्या होगा, उसी समय बिस्तर पकड़ लेंगे। तो बाबा कहता है, अगर तुम बच्चे शक्तिशाली बन करके रहते हो, शक्तिशाली बनने के लिए तो हम सभी जानते हैं अच्छी खुराक और एक्सरसाइज, अच्छा भोजन जो खाते हैं, शक्तिशाली भोजन, लेकिन भोजन खाएं और एक्सरसाइज न करें, हजम न करें, तो भी बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए शक्तिशाली भोजन बाबा की मुरलियां हैं, ज्ञान का चिंतन है, मनन है, अच्छा भोजन हमको बाबा देता है। और ये भोजन जिस आत्मा को आदत बन गई है खाने की, जैसे हमारी दादी जी थी, कितनी बार मुरली पढ़ती, जब रात को नींद खुल गई अपना लैंप जलाया और पढ़ना शुरू कर दिया। आज दादी जानकी मेरे को कह रही थी कि जब बाबा चले गए तो बाबा के जाने के बाद मैं आई तो मैं सारा पत्र पुष्प तुम्हारा पढ़ डाला, जो तुमने भेजा सेंटर पर सब पढ़ा। इतनी आदत कि रात को भी अगर समय मिल गया तो जो खजाना है उसको अच्छी तरह से पढ़ लिया, मनन कर लिया, चिंतन कर लिया। जब नींद खुल गई, जब उठ गए, जब बैठे हैं, जब फ्री हैं, इधर उधर की पुस्तकें या टीवी सीरियल देखने की आदत अगर किसी को हो तो आप समझते हो उसके अंदर आजकल क्या परोसा जा रहा है। वही तो विघ्नों की सारी जड़ है, सारी समस्याओं की जड़ है, जो आज गंदे गंदे चित्र हम टीवी में देख लेते हैं, हिंसा के चित्र देख लेते हैं, बलात्कार के देख लेते हैं, गंदगी के देखते हैं, उनका प्रभाव कोई कितना भी कहे, कितना भी योगी कहे कि मेरे ऊपर कुछ नहीं पड़ता है, लेकिन जो कल बाबा ने कहा है कि मैं जनवरी तक तुम बच्चों को मन वचन कर्म और स्वप्न तक भी पावन देखना चाहता हूं, वो तभी हो सकता है जब हम सभी कुछ प्रतिज्ञा करें, कुछ संकल्प करें। सिर्फ अमृत वेले उठ करके आप बैठ गए और थोड़ी चेकिंग किया और फिर सो गए या फिर अपनी कारोबार में लग गए, दृढ़ता से संकल्प नहीं किया है तो ये अपवित्रता के विघ्न से मुक्त नहीं हो सकते हैं। और जहां पर अपवित्रता का कोई भी अंश है, आप सभी नोट कर लें, जहां पर दैहिक आकर्षण है, जहां पर कोई भी लगाव है, झुकाव है, आत्मा किसी की तरफ भी प्रभावित है, वहां ही सब प्रकार के विघ्न खड़े होते हैं, मनमुटाव होते हैं, टकराव होते हैं, एक दूसरे से नफरत होती है, घृणा होती है, द्वेष हो जाता है, जितनी समस्याएं हैं उन सब की जड़ इम्प्योरिटी है, अपवित्रता है। मानसिक अपवित्रता भी विघ्नों को जन्म देती है, इसलिए हमारे पवित्र विचार, शुद्ध विचार तभी बन सकते हैं जब हम बहुत अच्छी तरह से बाबा के ज्ञान को घोट घोट करके अपने आप को शक्तिशाली बना लें। और दूसरा, बीच बीच में एक्सरसाइज जरूरी है। ये जो बाबा ने पांच स्वरूपों की एक्सरसाइज बताई है वो इतनी बढ़िया है, इतनी अच्छी है, करने का अभ्यास डालना, आदत डालना, सिर्फ ऐसे नहीं बाबा ने तो कहा है समय मिलेगा तो कर लेंगे, नहीं, हर प्रकार से आपके स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अभी अभी आकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी निराकारी, सेकंड भी नहीं लगता है, संकल्प उठा और आत्मा डिटैच हो जाती है। कभी साकार वतन में अपने ऊंचे भाग्य का स्मरण करती है, अपने पूज्य स्वरूप को देखती है, कैसे भक्तों की लाइन लगी है, कैसे मैं आत्मा अपनी मूर्ति के द्वारा अन्य आत्माओं की मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। पूज्य स्वरूप भी बहुत शक्तिशाली है और वर्तमान तो क्या भाग्य है हम सबका, हम सभी जानते हैं, भगवान की नजरों में पल रहे हैं, भगवान की छत्र छाया में हम पल रहे हैं, हमें गाइड भी कर रहा है, पढ़ा भी रहा है, सकाश भी दे रहा है, वतन से बैठ करके अपनी शक्तियां भी दे रहा है। हम सब ब्राह्मण जीवन के भाग्य को अगर स्मृति में लाते हैं तो लगता है सचमुच कहाँ है दुनिया और कहाँ है हम, कैसे भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। तो गाइड बन करके एक एक बात के लिए कोई गाइड करे, बच्चे ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे चलो, ऐसे घर में रहो, ऐसे अपने आप को विकारों से, बुराइयों से, तमोगुणी वातावरण से सेफ रखो, हर बात के लिए श्रीमद दे रहा है, गाइड कर रहा है, तो हम सबका ब्राह्मण जीवन का कितना ऊंचा भाग्य है। और हमारा भविष्य पद, देव पद कितना महान है कि हम ही आदि स्वरूप और अनादि स्वरूप, कल जो बाबा ने स्मृति स्वरूप बताया कि बच्चे अनादि स्वरूप में कितनी आपके अंदर चमक है, कैसे बाबा के साथ चमकते हुए स्वरूप में परमधाम में निवास करते हो और फिर जब आदि काल सतयुग में आते हो तो भी शरीर और आत्मा दोनों ही पावन है। इतनी प्योरिटी की लाइट है, इतनी शक्ति है, जो कोई विकार कोई विघ्न सामने आता ही नहीं है। तो हम ये ड्रिल करते हैं, साकारी ड्रिल है, अपने पूज्य स्वरूप की स्मृति, अपने ब्राह्मण स्वरूप की स्मृति और अपने भविष्य देव स्वरूप की स्मृति। लेकिन इससे भी जब हम पार चलते हैं तो अपने अव्यक्त रूप में, लाइट रूप में, फरिश्ते रूप में बाबा को वतन में देखते हैं और अपनी उस डबल लाइट स्थिति में बैठ करके बहुत हल्के होकर के विश्व भ्रमण करते हैं और आत्माओं को शक्तियां दान करते हैं फरिश्ते स्थिति में। और उससे भी ऊंची स्थिति जो निराकारी स्थिति है, बीज रूप की स्थिति है, जिसमें भी कर्म विनाश हो जाते हैं, आत्मा के संस्कार परिवर्तन हो जाते हैं। तो ये ड्रिल पांच स्वरूपों की साकारी, आकारी और निराकारी स्वरूप में करने का अगर अभ्यास है तो आत्मा निरंतर शक्तियों से संपन्न है। और शक्तिशाली स्थिति में अगर वो रहती है तो परिस्थितियां उसके लिए क्या बड़ी बात है, आएंगी, खत्म हो जाएंगी। बातें किसके आगे नहीं आती हैं, इसलिए आएंगी और आकर के टकरा के वापस चली जाएंगी। लहरें आए ही नहीं, बाल आए ही नहीं और कहे मैंने विजय प्राप्त कर ली, तो उसको विजयी कौन मानेगा। तो हम सभी बाबा के बच्चे विजयी माला के विजयी रत्न हैं, इस स्मृति को बढ़ाओ। मैं आपको इस देह विमान को समाप्त करने के लिए उसकी दो निशानियां सुनाता हूं। आप सभी जानते हैं जिसमें देह विमान थोड़ा भी अंश मात्र है, अभी तक रहा हुआ है, उसे कोई न कोई बात का अभिमान जरूर रहता है। मेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, मेरे जैसी समझ किसी के पास नहीं है, मेरी जैसी सेवा कोई नहीं कर सकता है, मैं तो सब जानता हूं, मेरे अनुभव है मेरे को, इस बात का अभिमान। और अभिमान के कारण क्रोध, और क्रोध के कारण रोब, जो बाबा ने उसका का अंश कल कहा ना, रोब का अंश, ये क्रोध का अंश रोब है। रोब समझा ना मुरली से बाबा की, ध्यान गया होगा, बाबा बहुत सूक्ष्म लिए जा रहा है। चार बातों की चेकिंग बताई प्योरिटी के अंदर, उसमें सबसे पहले कहा अपनी वृत्तियों को चेक करो, ये वृत्तियां अनासक्त हैं, ये वृत्तियां बिल्कुल उपराम हैं, वृत्तियों को चेक करो। फिर दूसरा कहा अपने संबंध संपर्क में शुभ भावना और शुभ कामना को चेंज करो। हमारे पास एक प्रश्न आया है अभी अभी, शुभ भावना और शुभ कामना में अंतर क्या है। भावनाएं हमारी हैं, अच्छी हैं, लेकिन जब तक एक इच्छा शक्ति नहीं होती, विल पावर नहीं होती है, तब तक उन भावनाओं को स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। अगर हम भावनाओं को स्वरूप देना चाहते हैं तो बहुत दृढ़ता की, इच्छा शक्ति की जरूरत है। इच्छा शक्ति माना कामना, शुभ कामना। तो शुभ भावनाएं तो हम कई बार रखते भी, अपने प्रति भी, सबके प्रति भी, सबका भला हो, लेकिन अगर उसके साथ कामना नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है, शुभ विल पावर नहीं है, तो भावनाएं प्रैक्टिकल स्वरूप नहीं लेती हैं। इसलिए दोनों शब्द बाबा प्रयोग करते, शुभ भावना, शुभ कामना। तो प्योरिटी की एक हाईएस्ट स्टेज है जब आत्मा संबंध संपर्क में आती है, तो कई बार कईयों की छोटी मोटी बातें जो अच्छी नहीं है, नहीं होनी चाहिए, वो नोट हो जाती हैं, और जरा भी अगर हमारे दिल में समा गई, नोट करना अलग चीज, लेकिन अंदर चली गई, तो उसके प्रति जो नफरत है, घृणा है, वैर है, ये इम्प्योरिटी है। इसको कल बाबा ने बहुत गहराई से स्पष्ट किया कि बच्चे चार बातें चेक करो, एक वृत्तियों को चेक करो, दूसरा अपनी भावनाओं को चेक करो संबंध संपर्क में, और तीसरा व्यर्थ बोल। जो व्यर्थ बोल कभी कभी निकलते हैं, और उसमें व्यर्थ बोल पर अंडरलाइन कराया रोब वाले बोल, जिसको क्रोध का अंश कहा है। अगर क्रोध का अंश है हमारे अंदर, भले हम ऊपर से गुस्सा नहीं कर रहे हैं, चिड़चिड़े भी नहीं हैं, लेकिन बात बात में उसको आंख दिखा दें उसे ऐसे बात करें जो समीप ना आ पाए, डरवा दें, डर जाए हमारे सामने आने से, ये रोब कहलाता है। ये अहंकार का दूसरा भाई है। इसलिए चौथी बात थी उसमें व्यर्थ संकल्प की। तो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ वृत्तियां, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कामनाएं, जिसको शुभ भावना और शुभ कामना में परिवर्तन किया, ये चार बातों को चेक करो, ये प्योरिटी की हाईएस्ट स्टेज है। तो जब आत्मा अपने इस प्रकार की चेकिंग करती कि अभिमान के कारण विघ्न आ रहे हैं, दूसरा किसी का कोई थोड़ा सा भी अपमान कर दे, कहता मेरी इज्जत ले ली इसने, तो मेरे को बीच में टोक दिया, मेरे को सबके बीच में इसने क्यों कहा, अभिमान के बाद अपमान की जो फीलिंग्स हैं, वो भी सेंटर के अथवा स्थान के वायुमंडल को अनेक विघ्नों में बदल देती है। कोई भी आत्मा सम्मान तो चाहती ही है, आपको नहीं, लेकिन चाहे जो भी हो, छोटा हो बड़ा हो, सम्मान तो चाहिए ही हर एक को। और बाबा हम सबको सिखा रहे हैं, बच्चे सम्मान मांगो नहीं, मांगने से नहीं मिलता है, तुम देते जाओ तुमको उसका रिटर्न जरूर मिलेगा, देना सीखो। और देंगे नहीं और मांगते रहेंगे, दें सभी हमें, तो देंगे नहीं कोई भी, मांगने से नहीं मिलेगा। इसलिए जो अपमान की फीलिंग है या अभिमान है जो अंदर का, वो श्रेष्ठ स्वमान से ही समाप्त हो सकता, वो अभिमान है एक, वो अभिमान है, वो अपमान है और वो स्वमान है, स्वयं का मान, खुद जो करना जानता है, स्वयं को मान देता है। बाबा हम सबको खुद को खुद कहता है, वैसे कहता मियां मिट्टू नहीं बनो, अपनी बड़ाई नहीं करो, लेकिन ये बड़ाई नहीं है, एक रियलिटी है कि जो बाबा के टाइटल हैं, बाबा का एक एक बच्चा उसका मास्टर है। कल बाबा ने कहा मास्टर मेरे से बड़ा है। अगर बाबा विश्व कल्याणकारी है तो बाबा कहता तुम बच्चे मेरे मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो हम 500 मान आपको स्मृति में दिलाते हैं, जो हर विघ्न के लिए, उसका सामना करने के लिए बहुत अच्छे शस्त्र हैं। सबसे पहला एक समान जिसको बाबा कहता है, बार बार स्मृति में लाओ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। बाबा सर्वशक्तियों का भंडार है, अथॉरिटी है, लेकिन हम बच्चों को सर्वशक्तियां वरदान के रूप में दी हैं। अगर हम इस स्मृति में रहते हैं, सर्वशक्तिवान की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, ये सर्वशक्तियां मेरी सेवाधारी हैं, मेरे आर्डर पर चलने वाली हैं, तो ये एक समान मैं समझता हूं अनेक प्रकार की फीलिंग्स से प्रूफ बना देता है। क्योंकि सहन करने की भी शक्ति है, तो सामना करने की भी शक्ति है, तो परखने की और निर्णय करने की भी शक्ति है, कहां पर किस शक्ति का प्रयोग किया जाए। अगर समय पर वो शक्ति याद आ गई तो विजयी बन जाएंगे। इसलिए बार बार अपनी सर्व शक्तियों से संपन्न स्थिति को ये टाइटल दो कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। और दूसरा, मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूं, विघ्न हर्ता हूं, विघ्न उत्पन्न करने वाला नहीं। कई लोग विघ्न पैदा कर देते हैं, होगा कुछ भी नहीं, छोटी सी अगर बात होगी नेगेटिव कोई व्यर्थ, उसको इधर बता के उधर बता के, इधर सुना के उधर सुना के, वायुमंडल में फैला करके छोटी सी बात को इतना बड़ा रूप दे देते हैं, जो छोटी सी बात एक पहाड़ का रूप बन जाती है, लगता बहुत बड़ा विघ्न आ गया, वायुमंडल खराब हो गया, सेंटर का वायुमंडल ही अच्छा नहीं, क्या हुआ, बात छोटी सी थी, कोई बात हुई, किसी को अच्छी नहीं लगी और उसने 10 लोगों के आगे वर्णन कर दिया, विघ्न खड़ा हो गया, समस्या आ गई, सेंटर का वायुमंडल भारी हो गया, अच्छा ही नहीं लगता। अब स्मृति स्वरूप आत्मा बन जाए कि मैं मास्टर विघ्न विनाशक हूं, मैं विघ्न हरता हूं, मैं विघ्न करने वाला नहीं हूं। अगर कोई विघ्न है भी तो मैं नॉलेजफुल हूँ। विघ्न विनाशक कौन था? श्री गणेश। हर बात में कोई भी कार्य प्रारंभ करेंगे, घर में भी प्रवेश करेंगे, बही खाता भी रखेंगे, कुछ भी करेंगे तो श्री गणेश निकालेंगे, स्वास्तिका बनाएंगे और उसको कहेंगे श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश को विद्यापति माना गया है, विघ्न विनाशक माना गया है, लंबी सूढ़ परखने की निशानी है, परख लेता है जो दूर से ही कौन से विघ्न आ सकते हैं। पेट बड़ा है, समा लेता है अंदर, वर्णन नहीं करता है। विघ्नों का वर्णन मनन चिंतन विघ्नों को बड़ा रूप दे देता है, वायुमंडल को खराब कर देता है। कोई भी विघ्न है उसको बाबा कहता है सब विघ्नों को समाप्त करने की तुम्हारे पास राम बाण औषधि है। जानते हो है औषधि सबके पास, राम बाण औषधि है। किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का विघ्न, चाहे वो इविल स्पिरिट्स का हो, भटकती हुई आत्माएं बहुत प्रभाव डालती हैं, चाहे तंत्र मंत्र का भी किसी के आगे विघ्न आ गया हो, चाहे अपने संस्कार स्वभाव का विघ्न आ गया हो, चाहे किसी से वैर विरोध का टकराव का विघ्न आ गया हो, कोई आपके आगे दुश्मनी लेकर के आए, आपका दुश्मन बन करके आए, आपको सताने के लिए आए, कहीं से एंटर्स के मकान खाली कराने के लिए कोई मकान मालिक पीछे पड़ जाए, कुछ भी हो, हर विघ्न की राम बाण औषधि है। कौन सी बोलो माताएं, है आप सबके पास? बस बाबा की याद की गुफा में बैठ जाओ, योग का प्रयोग करो, योग की शक्ति, बाबा की याद, बाबा की स्मृति हर विघ्न को हर लेगी। लेकिन याद की विधि यथार्थ हो, स्वार्थ वाली याद नहीं, बाबा इस विघ्न को समाप्त कर दो, स्वार्थ से याद नहीं करो, लेकिन ऐसे बाबा के योगी बच्चे, उनका एक संगठन होना चाहिए। जैसे विरोधियों का एक संगठन बन जाता ना, फटाफट बना लेते अपना संगठन, अगर एक कोई नाराज हो जाए तो दूसरा, अगर थोड़ा सा कोई अपसेट होगा, कमजोर होगा, कोई संस्कार होगा तो उसके संगठन बना लेगा वो। नेगेटिविटी का संगठन, नकारात्मक लोगों का संगठन बनना बड़ा सहज हो जाता है, लेकिन जो एक पॉजिटिव संगठन है, जो अच्छे चिंतन में रहने वाला है, जो योगियों का संगठन है, हर स्थान पर हमारी जो दोस्ती, हमारा जो प्यार है, ऐसे योगी श्रेष्ठ चिंतन करने वाली आत्माओं के साथ होना चाहिए। वो सभी बैठ करके आधा घंटा, एक घंटा ऐसे विघ्न को समाप्त करने के लिए तपस्या करें, और इसी स्मृति से तपस्या करें कि मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं। बाबा ने हमें ड्यूटी दी है कि योग की किरणें इस शक्ति को फैलाएंगी, ये वाइब्रेशन फेंकेंगी और ये विघ्न हर जाए, खत्म हो जाए। तो हम हर विघ्न को योग की शक्ति से, योग की किरणों से समाप्त कर सकते हैं। ये हम सब के अनुभव हैं और हम सब ने देखे हैं। यहाँ पर कोई भी विघ्न कभी भी यज्ञ पर आया है, दादी जी ने संगठित रूप में पूरी पूरी रात हम सब से भट्टी कराई है, कुछ नहीं वर्णन किया, कुछ किसी को बताया नहीं, लेकिन कहती थी आज 1 बजे सभी उठेंगे। क्यों, क्या हुआ? तरीके क्यों क्या नहीं करो, आज रात भर योग करना है, जल्दी सो जाओ, 3 घंटे 2 घंटे सो करके सब फ्रेश हो करके आ जाओ। रात को 1 बजे योग की भट्टी शुरू हुई, दादी खुद आके बैठ गई, कमेंट्री करा रही है, योग की किरणें दे रही है, और 5 बजे तक सब ने योग किया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन ऐसी जब भट्टियां हम करें तो विघ्न अपने आप समाप्त हो जाएंगे। अगर ज्यादा बड़ा विघ्न है तो बाबा कई बार कहता है 21 दिन तक प्रयोग करो, ये भी एक व्रत है, व्रत लो, विघ्न समाप्त हो जाएंगे। लेकिन विघ्न है, विघ्न है, इधर सुनाया उधर सुनाया, 10 पेज का पत्र मधुबन में लिख दिया, दादी को लिख दिया, कोई पढ़ता नहीं, फाड़ के फेंक देते, क्या करेगा दादी, क्या करेगा यज्ञ, उसका हल इनके पास क्या है, कहाँ है? विघ्न आपके पास है और हल यज्ञ करेगा, कहां से करेगा? आपको उस विघ्न को विघ्न हर्ता बन करके हर लेना है, और उसके लिए श्रेष्ठ चिंतन करने वाली आत्माओं के संगठन की जरूरत है। पांच दस पंद्रह जितने हो, नहीं ज्यादा है, दो लोग भी मिलकर के मौन की तपस्या करो, एक दिन दो दिन बिल्कुल बाबा की याद में समा जाओ, विघ्न समाप्त हो जाएगा। तो ये एक समान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मैं विघ्न विनाशक हूं, और सबसे अच्छी तीसरी एक बात है, मैं मास्टर दाता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए किसी से। विघ्न वहां आ रहे हैं जहां हमें चाहिए, चाहे नए हैं, चाहे मान चाहिए, चाहे समान चाहिए, चाहे एरिया चाहिए, चाहे स्थान चाहिए, चाहे सेंटर चाहिए, जहां चाहिए चाहिए है वहां ही समस्याएं हैं, देख लेना आप, हदें हैं। और अगर ये बच्चे बाबा के समान मास्टर दाता बन जाए, ले जाओ भाई, आपकी एरिया है आप ही ले जाओ, हमको नहीं चाहिए, आपका स्थान है आप ही ले जाओ, आप ही सेवा करो, हमें जितनी स्थान बाबा ने दिया है हम उसमें ही संतुष्ट हैं। मास्टर दातापन की स्मृति, सम्मान देना सीख जाएं, सबसे निर्माण रह करके हर एक को सम्मान देना सीख जाएं, तो मैं समझता हूं बहुत से विघ्न हर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। जहां देने की भावना नहीं है, सब कुछ लेने की भावना है, वहां ही विघ्न आते हैं। तो बाबा ने हम सबको, जैसे बाबा दे रहा है, कुछ नहीं चाहिए बाबा को, अखुट अखंड भंडार हम सब के आगे लुटा रहा है, आता है निस्वार्थ भाव से। हम तो याद करते हैं 40 वर्षों से अव्यक्त रूप में क्या स्वार्थ था ब्रह्मा की आत्मा का, लेकिन बच्चों की सेवा करके नई दुनिया बनानी है, बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, एक ही शुभ भावना और शुभ कामना का संकल्प कि मैं बच्चों के साथ वापस जाऊंगा, नई दुनिया बनानी है, जब तक बनी नहीं है तब तक परमधाम का गेट नहीं खुलेगा। 40 वर्ष हो गए हैं हम सब की पालना करते हुए, अव्यक्त वतन में रहने वालों को, जिसको साकार से कोई बंधन नहीं है, सब बंधन छोड़ करके चला गया, वो इस प्यार के बंधन में बंधा हुआ है, हम सबको संपन्न संपूर्ण अपने समान बनाने के लिए। हम विघ्नों में ही लड़ते रहेंगे, आपस में ही टकराते रहेंगे, बाबा के समान कब बनेंगे? इसलिए बाबा कहता है बच्चे मास्टर दाता बन जाओ, हर एक को दो, जो चाहिए दे दो, जो आपके पास, बाबा ने आपको सब कुछ दिया है, इतना मान दिया है, इतना सम्मान दिया है, इतना सब भरपूर किया है, तुम क्यों कंजूसी करते हो, तुम भी दो, देने से बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, खुटेगा नहीं, आ जाएगा। तो ये तीसरा सम्मान है। और चौथा सम्मान है, मैं विजयी रतन हूं। बार बार स्मृति में लाओ, माया या कोई भी रूप विकारों का मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, मैंने तो कल्प कल्प विजय प्राप्त की थी, मेरे सिवाय और कौन विजयी बनेगा, इसलिए मैं विजयी रतन हूं, एक बहुत अच्छा सम्मान है। और मैं मास्टर रचयिता हूं। रचयिता रचना का ख्याल करता है, सारी विश्व की आत्माएं रचना हैं। क्यों? एक बेहद के दृष्टिकोण से आप सभी नोट करें कि हम सब पूज्य और पूर्वज आत्माएं हैं, आदि देव के साथ साथ इस कल्प वृक्ष के तने में बैठ करके तपस्या करने वाली आत्माएं हैं। इस सारे वृक्ष को शक्तियों की सकास देने वाली आत्माएं हैं, इसलिए इतने ऊंचे समान में बैठ करके अपनी रचना को शक्तियों का दान दो। अगर हम सभी विघ्न विनाशक आत्माएं हैं तो ये सेवा करूं, ये सेवा करूं, यहां जाऊं, ये इस स्थान पर जाऊं, बाबा कहता संदेश देने की सेवा कर लो, जहां हदें हैं, जहां टकराव हैं, जहां पर कोई रुकावटें हैं, उसमें प्लीज नहीं जाओ, सकास दो, शक्ति दो, मनसा सेवा करो, अच्छे वाइब्रेशन दो, शुभ भावना रखो, सारे वृक्ष की रचना को को गति सदगति देने की सबसे अच्छी विधि है हम आत्माएं कल्प वृक्ष के नीचे आदि देवों के साथ बैठ करके शक्तियों की सकास दें। इसलिए कल बाबा की मुरली में इशारा था अपनी मनसा सेवा को, मनसा स्थिति को बढ़ाओ, दुखियों की पुकार सुनो, आवाज सुनो और सुन करके उन पर उपकार करो। समय की ये पुकार है, तो हम सभी बाबा की पुकार, समय की पुकार, एडवांस पार्टी की पुकार सुनते हैं और सुन करके अब बाबा के कार्य में मददगार बने, मास्टर रचयिता बन करके। तो हम सब बाबा के बच्चे, किसी भी प्रकार का विघ्न हुआ, आपको लगता हो कि मेरे मार्ग में मुझे ऊंची स्थिति बनाने में ये बात रुकावट डाल रही है, मैं कहूंगा कि भगवान के घर में आए हो आप सभी, उस विघ्न को, चाहे वो काम विकार का विघ्न है, चाहे क्रोध का विघ्न है, चाहे अहंकार का विघ्न है, आपके मार्ग में जो विघ्न है पहले उनको चेक करो, स्वयं को चेक करो, स्वयं को दुआएं दो और उस विघ्न को स्वाहा करके यज्ञ में जाओ। और फिर जो आपके संबंध संपर्क में विघ्न है उनको भी महसूस करके उन विघ्नों का कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। खुद को खुद ही निवारण करना है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए हर सब्जेक्ट की अथॉरिटी बन करके, ज्ञान योग धारणा और सेवा की अथॉरिटी बन करके हम विघ्नहर्ता बन जाएं तो हम बाबा के कार्य में सहज सहयोगी हो जाएंगे। बाबा ने आज बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि जो बच्चे अशरीरी रहने का अभ्यास करते हैं वो मेरे मददगार हैं, जो योग के गहन अनुभव में रहते हैं, अशरीरी स्थिति में रहते हैं, जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं, जो अंतर्मुक्ता की गुफा में रहते हैं, जो व्यर्थ चिंतन और परचिंतन से मुक्त होकर के रहते हैं, वो विघ्न विनाशक बन करके अपने और अपने परिवार के सब विघ्नों को समाप्त कर सकते हैं। वही सच्चे स्वरूप में बाबा की स्थापना में मदद कर रहे हैं और हम सभी यही संकल्प लें कि हम नई दुनिया बनाने वाले हैं, कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं, कोई भी डिस्ट्रक्शन का कार्य, कोई की स्थिति को बिगाड़ने का कार्य मैं आत्मा नहीं कर सकती। सबकी स्थितियां अच्छी से अच्छी बने और मैं अपनी अच्छी स्थिति से बाबा के कार्य में मददगार बनूं, तब कहेंगे ये आत्मा विघ्न विनाशक आत्मा है, ये माया जीत विजयी आत्मा है, ये भगवान की राइट हैंड राइट भुजा है। ओम शांति।